समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यह है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार देवेंद्र। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ट्यून्ड इन टू आवर आकाशवाणी एफएम गोल्ड, दैट्स 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड ऑफ कोर्स आकाशवाणी नेटवर्क। We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 9th of June, 2025. So, Devendra, let's get going with some news headlines first.
जी, सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दुनिया के समक्ष रखने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात करने के बाद अमेरिका की यात्रा पूरी की। कई देशों के दौरे के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख वार्ताकारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच बनाने और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंधों का प्रमाण देने के लिए 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का काम 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों को सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल 3 जून को अमरीकी राजधानी पहुंचा और 3 दिनों के दौरान कैपिटल हिल के साथ साथ वॉशिंगटन में भी कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने अमरीकी सरकारी अधिकारियों और सांसदों को सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख के बारे में जानकारी दी। 24 मई को भारत से न्यूयॉर्क पहुंचे इस दल ने दौरे के आखिरी चरण में वॉशिंगटन पहुंचने से पहले गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील की भी यात्रा की।
At least 28 persons stranded at Chatain in North Sikkim and 20 army personnel were airlifted yesterday as the road connectivity in the region had been snapped due to multiple landslides triggered by heavy rain. A chopper evacuated 28 civilians comprising miners, tourist taxi drivers and government officials from Chatain in the first sortie, while 20 army personnel returned to Pakyong Greenfield Airport in another trip. The Mi-17 helicopter also transported essential supplies from army personnel stationed at Chatain. The Sikkim government arranged the helicopter to provide immediate relief and safe evacuation of those affected by the landslides in the region after getting a distress call from them. This comes under the ongoing coordinated relief and evacuation efforts being undertaken in view of the recent adverse conditions that have disrupted road connectivity and access to the region. North Sikkim has been hit by multiple landslides triggered by heavy rain, disrupting road and telecommunication connectivity there. Defence Research and Development Organisation's Vehicle Research and Development Establishment VRDE in Ahmednagar, Maharashtra has transferred technologies of 9 defence systems to 10 Indian industries. The systems include the chemical, biological, radiological, nuclear CBRN, Ricky vehicle, mounted gun system, anti-terrorist vehicle, Vajra riot control vehicle, among others. The technology transfer ceremony was attended by DRDO Chairman Dr. Samir V. Kamat. Speaking on the occasion, Dr. Kamat complimented DRDO and the industry for the exceptional performance of indigenous systems during Operation Sindoor. VRDE also signed a memorandum of understanding with COEP, Technological University Pune, to collaborate on emerging technologies.
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल रात मोनाको में नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री आसमुंड ग्रोवर और क्रस्ट से मुलाकात की। बैठक के दौरान नॉर्वे के मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। डॉ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नॉर्वे में भारत के पक्ष के लिए एक मजबूत सार्वजनिक भावना है और कई नागरिक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे का दौरा करें। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल रात मोनाको समुद्री सम्मेलन को संबोधित किया। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर और अनुसंधान पहल, विशेष रूप से पुदुचेरी और लक्षद्वीप में पायलट परियोजनाएं, तटीय कटाव, जैव विविधता, मत्स्य पालन, पर्यटन और संरक्षण जैसे विविध मुद्दों का समाधान करती है।
India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. Today we focus on the development journey of Northeast India, a region once seen as distant, now standing tall as a symbol of connectivity and progress.
Over the last decade, Northeast has witnessed a remarkable shift from isolation to integration. Under the Act East policy and the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the region has moved from neglect to priority. Signing of peace accords has led to peace and decline in violence in the region, and these efforts have paved the way for reducing Armed Forces Special Power Act coverage in the region. Recently, Assam and Arunachal Pradesh have signed a MOU to resolve a decades-old boundary dispute. Connectivity has improved like never before. 10 new greenfield airports, new rail links in states like Mizoram, and Ro-Ro ferry services on the Brahmaputra have transformed mobility. Iconic projects like the Bogibeel Bridge have brought once remote regions closer. Schemes like PM Divine and Unnati 2024 are unlocking new economic potential. Over 1,35,000 crore rupees worth of externally added projects have been supported to boost infrastructure and livelihoods. The region is on track to harness 15,000 megawatts of clean energy through a major push in hydroelectric power development. Today, the Northeast is not just a frontier, it is a rising engine of India's development journey. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amrit Kaal. Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke 11 saal.
अमेरिका में दो भारतीय अमेरिकी संजय सिंघल और सुख कौर ने टेक्सास में सिटी काउंसिल के दूसरे चरण के चुनाव में जीत हासिल की है. शुगरलैंड के डिस्ट्रिक्ट 2 में संजय सिंघल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नासिर हुसैन को हराया. श्री सिंघल सेवानिवृत्त ऊर्जा अधिकारी और आईआईटी दिल्ली से स्नातक हैं. इसके अलावा कैरोल मैकक चेन शुगरलैंड का मेयर चुने गए हैं. ये भारतीय मूल की बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश सोमवार से लागू हो गया. अमेरिका ने जिन 12 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं. बुरुंडी, क्यूबा, लावोस, सियेरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों के लोगों के प्रवेश पर भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा. ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध के लिए आतंकवाद, खराब पहचान सत्यापन, वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने और आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया. ये आदेश राष्ट्रपति की घोषणा के जरिए जारी किया गया जो कार्यकारी आदेश के समान है.
Moving on to the world of sports, in tennis, Spain's Carlos Alcaraz pulled off a remarkable comeback to defend his French Open title, defeating world number one Yannick Sinner of Italy in the longest ever French Open final last night. We have more from the sports desk.
Down 2 sets and facing 3 championship points, reigning champion Alcaraz seemed on the brink of defeat. But the 22-year-old Spaniard roared back to claim a stunning victory in one of the most thrilling finals in Grand Slam history. With this, Alcaraz not only claims his second Roland Garros crown, but also secures his 5th Grand Slam title. In hockey, Indian junior women's team edged past Belgium with a 3-2 victory at the Hockey Centre of Excellence in Antwerp, Belgium last night. It was India's first match of their Europe tour. In this thrilling encounter, Geeta Yadav and Sonam found the net with field goals, while Lalthan Tulangi converted a penalty corner to secure the win for India. Moving ahead, Indian athletes dominated the second and final day of the Taiwan Athletics Open Championship, winning 10 medals including 6 gold, 3 silver in Taipei yesterday. Key winners of gold medals included 3-time national champion Vithya Ramaraj in women's 400-meter hurdles, Rohit Yadav in men's javelin throw and Annu Rani in women's javelin throw. In tennis, the WTT contender Skopje 2025 will begin in North Macedonia this morning. The tournament will last till 15th of this month. From India, world number 48 Manav Thakkar and Manush Shah will compete in men's singles, while world number 46 Manika Batra will compete in women's singles category. In football, India's senior men's team is all set to take on Hong Kong in a crucial 2027 AFC Asian Cup qualifier final round match at the Kai Tak Stadium in Hong Kong tomorrow. Chirag Jha, Sports Desk.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में ये थी आज की बड़ी खबरें. और श्रोताओं अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने महानगरों की तरफ। तो जानते हैं सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं सुबह।
यस देवेंद्र, आई एम स्टार्टिंग विद बेंगलुरु टुडे। साउथ वेस्टर्न रेलवे विद हेडक्वार्टर्स इन कर्नाटका ऑर्गेनाइज्ड अ साइकिल इवेंट यस्टरडे इन हुबली एज पार्ट ऑफ द खेलो इंडिया फिट इंडिया इनिशिएटिव। साइकिल इज अ हेल्थ सेंट्रिक इवेंट बाय द रेलवेज टू पास ऑन द मैसेज ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओवर 50 ऑफिसर्स ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवेज अलॉन्ग विद गोल्ड एंड सिल्वर मेडल विनिंग रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन्स पार्टिसिपेटेड इन cycling and other events. The program promoted fitness, wellness and an active lifestyle among the railway employees at large. The Southwest Railway's General Manager Mukul Sharan Mathur was the chief guest on this occasion. He lauded the efforts and achievements of the railway zone athletes on national and international platforms such as Asian Games and Commonwealth Games. He emphasized the importance of physical fitness in professional and personal life. He said the event manifests Fit India vision and motivates the railways to dedicate itself for the service of people. He said railways should remain fit and healthy and the railway sportsperson should raise the national flag high at national and international sporting competitions. Moving to Chennai now. Lieutenant General Manjinder Singh, Army Commander of the South Western Command and Colonel of the Madras Regiment, presented artificial limbs to beneficiaries under the Walk Again project, jointly organized by the Rotary Clubs of Coimbatore and Trichur. The initiative aims to provide 500 artificial limbs across districts in Kerala and Tamil Nadu. Medical departments and panchayat organizations helped identify and screen recipients. Medical camps were conducted under the supervision of orthopedic specialists, physiotherapists and technicians from Coimbatore Midtown Limb Centre. Custom-made limbs were fitted and gait training provided. Singh said the project will transform beneficiaries' lives by restoring mobility and self-confidence, enabling economic contribution and positively impacting families and society. He also felicitated veteran achievers of the Indian Army and praised the Madras Regiment for its service, including its role in Operation Sindoor. Anna University is planning to get an undertaking from recruiters that they will honor the job offers issued during placement drive. The Center for University Industry Collaboration is planning to invite more than 400 companies in 2025-26. K. Shanmugasundaram, director of the center, said that it has been planned to take the undertaking as students are not allowed to sit for the other placement interviews after accepting the job offer letters. The university is taking this step as a precautionary measure as it plans to extend the number of recruiters from 230 companies this year to 400 companies next by inviting new companies. Student ambassadors have reached out to 40 new companies and are preparing presentations with the strength of their individual departments and skill sets they have gained in the past 6 semesters. IIT Madras Pravartak Technologies Foundation is building market-facing technologies for the benefit of the public. The CEO of the Pravartak, Dr. M.J. Shankara, said that it was a challenge of translating academic research into real-world applications and what it means to be a non-profit housed at India's top patent filing academic institution. The aim is to take academic research from lab to field. IIT Madras focuses on fundamental research and the goal is to create market-facing solution. The objective is to train entrepreneurs. I beg your pardon, we are moving to Hyderabad now. Former President Ramnath Kovind has praised Haryana Governor Bandaru Dattatreya as a rare leader without any foes or rivals in public life. Speaking after releasing Dattatreya's autobiography in Telugu's Prajala Kathe Na Atmakatha, Story of People is My Story, he said Dattatreya is a personality who is a friend to all. Leaders cutting across political lines, including former Vice President M. Venkaya Naidu, Andhra Pradesh Chief Minister M. Chandrababu Naidu, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy, governors of various states and Union Minister G. Kishan Reddy attended the event. Mr. Kovind said that Dattatreya does not have a word like enemy in his dictionary of life, hailing the Dattatreya for his tireless efforts to uplift the poor and aiding those in need. He also recalled his imprisonment during the emergency. Venkaya Naidu said that Dattatreya's life has always been intertwined with people and remain committed to a political ideology is as important as honesty and integrity, which is exemplified by Dattatreya. Chandrababu Naidu described him as a gentleman politician and praised his service during the devastating 1977 cyclone and also his jail term during the emergency. He said the Haryana governor's life serves as a role model in many ways. Telangana governor Jishnu Dev Verma and his Andhra, Tripura and Odisha counterparts S. Abdul Nazir, N. Indrasena Reddy and K. Hari Babu and host of eminent personalities from different walks of life attended the event. And over to you now, Devendra, for rest of the news.
Ji. दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में यातायात को सुचारू बनाने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें शिवमूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनने वाली 5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। कुल 6 लेन की इस भूमिगत सड़क में इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, आग से सुरक्षा, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और इमरजेंसी निकासी जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना अगले वर्ष शुरू हो सकती है। दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए 12 जोनों में 120 संपत्ति कर शिविरों का आयोजन किया है। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 शुरू की है, जिसके अंतर्गत इन शिविरों में नागरिकों को संपत्ति कर दाखिल करने और कर माफी योजना का लाभ लेने में सहायता प्रदान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कई वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये नागरिक अवैध रूप से भारत में घुसे थे। मुंबई का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालय दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जा पर परिवर्तित हो जाएंगे। महाऊर्जा के नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए श्री फडणवीस ने घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले 2 वर्षों में 5 लाख से अधिक सौर कृषि पंप स्थापित किए हैं, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से अधिक हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पुणे के मावल तालुका के अंबी तारकवाड़ी में पुष्पलता डीवाई पाटिल अस्पताल का उद्घाटन करते हुए श्री फडणवीस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि हाल ही में 10 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब मरीज आज राज्य में 5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर रहे हैं। और कोलकाता चलते हैं, जहां मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने वाले मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसरो की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। काक द्वीप सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले ट्रॉलरों में सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सेफ्टी असिस्टेंट सिस्टम डिवाइस नामक ट्रांसपॉन्डर लगाने का काम चल रहा है। इस डिवाइस के जरिए गहरे समुद्र में मोबाइल नेटवर्क काम न करने पर चेतावनी संकेत भेजा जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रॉलर गलती से भारतीय सीमा पार कर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो भी ये अत्याधुनिक डिवाइस ट्रॉलर को अलर्ट करेगा। इससे समुद्र में मछलियों के स्टॉक का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। काकद्वीप सब डिवीजन में शुरुआती तौर पर 300 ट्रॉलरों में ये डिवाइस लगाने का काम चल रहा है। देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल भी अपने श्रोताओं को बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तपिस बढ़ रही है और आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री को भी पार कर सकता है। न्यूनतम तापमान भी कुछ कम नहीं रहा, 28 डिग्री रहा। सुबह भी हल्की हल्की गर्मी रही और दिन में आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना तो है, लेकिन यहां पर भी तापमान 33 और 25 डिग्री के बीच रहेगा, उमस भी बनी रहेगी। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली गिरने या हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 37 और 24 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। सुभद्रा, बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा?
Yes, rains all over the place, but it's missing Delhi, right? Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius. The maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius. The maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 36 डिग्री सेल्सियस।
और श्रोताओं के लिए आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। आज 9 जून है, 9 जून 2025।
यस देवेंद्र, बिफोर वी बिगिन गेट टू द हिस्ट्री सेक्शन, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। टुडे इज द इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। So documentation and keeping records of the same is extremely important for future generations, right?
Right.
So indeed, archives play a huge role in preserving our cultural heritage. Today is International Archives Day, and at the 2004 International Congress in Vienna, the 2,000 participants in attendance adopted a resolution requesting that the UN, that's United Nations, designate a specific day to mark the importance and value of archives. And in 2007, it was decided at the ICA annual general meeting that 9 June would be celebrated as International Archives Day. And of course, Devendra, archives hold historical records, photographs, artifacts, art, technology. It enables digitization of these items as well.
जी, हमें अतीत को जानने का एक मौका मिलता
yes,
है ऐसे संस्थानों से,
yes.
और इसलिए इन संस्थानों की भूमिका बहुत अहम है।
Yes, of course. And starting with history today, getting to the year 1549, the Church of England adopted the Book of Common Prayer compiled by Thomas Cranmer.
जी, 1752 में तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण किया था, और 1898 में चीन ने हांगकांग को 98 वर्षों के लिए ब्रिटेन को लीज पर दिया था।
In 1902, the Automat restaurant, the first restaurant with food vending machines, opened in Philadelphia.
जी, और 1934 में कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक पहली बार डिज्नी वॉल द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैंड में दिखाई दी थी।
1964, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही गेव द कोटेशन जय जवान जय किसान, व्हिच मोटिवेटेड द वॉर अफेक्टेड इंडियंस टू बूस्ट देयर मोरल। ऑफ कोर्स ही रिमेंड इन ऑफिस ऑफ कोर्स टिल ही डाइड ऑन January 11, 1966।
जी, और इससे कुछ पहले की बात करें तो 1959 में अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन सबमरीन को लॉन्च किया था। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ये दुनिया की पहली सबमरीन थी। और 1975 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सदन की कार्यवाही का रेडियो पर लाइव प्रसारण किया था। और अब आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं उन महान लोगों को, महान नायकों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से समाज और देश को, राष्ट्र को प्रेरित, प्रभावित किया। सबसे पहले स्मरण लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा अत्यंत पिछड़े जनजातीय समुदाय के उत्थान के साथ भारत को स्वाधीन कराने के लिए सक्रिय और समर्पित रहे। उन्होंने अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध मुंडा आदिवासियों को खड़ा किया। 19वीं सदी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और एक दल को मुंडा धर्म प्रचार में तो दूसरे को राजनीतिक कार्य में लगाया। कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी थीं जिनके कारण लोग भगवान मानने लगे थे बिरसा मुंडा को, और लोगों में यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। और अब बात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हरिकिशन सिंह सरहदी की, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हरिकिशन सिंह सरहदी ने 23 दिसंबर 1930 को दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष जेफ्रे डी मोर मोरेंसी को 2 गोली मारी थी, जिसके बदले में इन्हें मृत्युदंड दिया गया। और स्वतंत्र भारत का स्वप्न लाखों लाख भारतीयों ने देखा था श्रोताओं, और इसके लिए अपना सब कुछ गंवाने से भी वो पीछे नहीं रहे। भारत के अमर शहीद क्रांतिकारी दिनेश चंद्र मजूमदार को भी आज हम नमन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज पुलिस कमिश्नर टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि उनकी योजना सफल नहीं हुई और वो इसमें चूक गए थे। उन्होंने कलकत्ता को अंग्रेजों से छीन लेने की योजना भी बनाई थी, लेकिन किसी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और बाद में आज ही के दिन यानी 9 जून को 1934 में उन्हें फांसी दी गई थी। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा
English novelist, generally considered one of the greatest Victorian era, Charles Dickens passed away in the year 1870 at the age of 58. Of course, he wrote 15 major novels, including A Tale of Two Cities, Great Expectations, as well as countless short stories and articles. And friends, birth anniversary of the legendary John Lord, a pioneer infusing rock and classical music for keyboard and the Hammond organ, for the legendary Deep Purple and Whitesnake. We'll be right back. June 9, 1891, American composer, lyricist Cole Porter, who brought a worldly elan to the American musicals, was born in Peru, Indiana. His musicals dominated Broadway from 1930s to 50s, and his sophisticated music and urbane style made him an international sensation.
Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock.
दुनिया, अफसाना, बरसात, पारसमणि, आया तूफान, मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों के लिए यादगार गीत लिखने वाले अपने समय के जाने माने गीतकार और शायर असद भोपाली की भी आज पुण्यतिथि है। असद भोपाली को अपने काम के चलते पहचान मिली, हालांकि उन्हें लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। 40 साल में करीब 100 फिल्मों के लिए 400 गीत लिखे। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिखे गीत कबूतर जा जा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वो पुरस्कार लेने नहीं जा सके। असद भोपाली ने 9 जून 1990 को इस दुनिया को अलविदा कहा।
बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए।
1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माता और पटकथाकारों में से एक रहे राज खोसला की भी आज पुण्यतिथि है। 31 मई 1925 को पंजाब में जन्मे राज खोसला ने गुरुदत्त के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मुख्य फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार मिला। इसके अलावा राज खोसला द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल है दो रास्ते, 16वां साल, काला पानी, एक मुसाफिर एक हसीना, चिराग, मेरा गांव मेरा देश और सन्नी। राज खोसला 9 जून 1991 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।
Sitar player Anushka Shankar celebrates a birthday today. Anushka Shankar, the daughter of sitar maestro Pandit Ravi Shankar, is a fusion lady who plays pure classical and at the same time turns to contemporary world music scenes wherein she combines other music elements. Birthday of Mick Box, the lead guitarist of a very popular progressive classic rock band from England that ruled the rock waves and radio all over the world, Uriah Heep. Mick continues to be active with Uriah Heep, which he co-founded in 1969 and is the last surviving member of the band's classic lineup.
And I chance to meet him one night wandering. He told me tales and he
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है देश की पहली महिला आईपीएस और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी का। 9 जून 1949 को आपका जन्म हुआ। वो पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। उनकी कई पुस्तकें वर्ल्ड फेमस रही, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी आई डियर भी शामिल है। और आज ही जयंती है भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई की। संगीत लहरियों से फिल्मी संगीतों को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार वसंत देसाई के संगीतबद्ध गीतों ने संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई। फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी लोकप्रिय है। और इसके अलावा तीन बत्ती चार रास्ता, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, सैरंद्री, तूफान और दिया, जिनके गीतों के लिए वसंत देसाई ने संगीत तैयार किया, वो गीत आज भी अमर है। और श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत और खूबसूरत संगीत के साथ ही अब चाहेंगे आप सभी से अनुमति, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी का समाचार सेवा।
Stay tuned for coming up now with समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन, follow the morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day.
नमस्कार।